हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस विक्रांत रंधावा के बारे में पता करके रहेगा कि अचानक से ये विकृत रंधावा कहाँ से आ टपका था। हालांकि अमन ने उसे एक बार पहले भी उसके बारे में बताया था कि विक्रांत रंधावा उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन उसका अचानक से आना अमित को खल गया था और साथ ही साथ विक्रांत रंधावा के पास जाने से अमित को अजीब सा एहसास होता था। लेकिन अमित को इस बात का दूर दूर तक कोई इल्म नहीं था कि जिस विक्रांत रंधावा के बारे में वो पता करना चाहता है वो विक्रांत रंधावा कोई आम आदमी नहीं है, वो काली शक्तियों का राजा तो है ही, साथ ही साथ उसने देवों पर भी अपनी विजय प्राप्त की है। उसके पास कितने ही सारे वरदान प्राप्त हैं, उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। वो हर किसी से ऊपर है, उसकी शक्ति सबसे ज्यादा है। लेकिन उस शक्तिशाली आदमी की केवल एक ही कमजोरी है, वो है सिर्फ और सिर्फ तारापरी। तारापरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विक्रांत रंधावा को सिर्फ और सिर्फ तारापारी का जिस्म चाहिए। अगर उस बच्चे के पेट में रहते विक्रांत रंधावा ने तारापरी के साथ जिस्मानी रिश्ता बना लिया तो उस बच्चे का पेट में ही खून हो जाएगा, वो बच्चा पेट में ही मर जाएगा और साथ ही साथ तारापरी पृथ्वी लोक से सीधा परीलोक में चली जाएगी और जो वो राक्षस बेहोश पड़ा हुआ है वो अपने असली रूप में आ जाएगा और वो भी ठीक हो जाएगा। विक्रांत रंधावा ये सारी बातें अच्छी तरह से जानता था। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस विक्रांत रंधावा के बारे में जानकारी लेकर रहेगा। आखिर ये है क्या चीज, इसीलिए उसने मल्लिका को कुछ इशारा कर दिया था। उसने मल्लिका को कह दिया था कि वो अपनी खूबसूरती के जाल में विक्रांत रंधावा को फंसाए, क्योंकि मल्लिका थी इतनी खूबसूरत कि कोई भी आम आदमी उसकी खूबसूरती में आसानी से आ सकता था। खैर, अमन तो एक जिन्नों का महाराज था तो उसका मल्लिका के चक्कर में आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन विक्रांत रंधावा तो काली शक्तियों के मालिक अमित की नज़र में केवल एक मामूली इंसान था, तो इसीलिए विक्रम काली शक्तियों के मालिक अमित को लगा था कि विक्रांत रंधावा मल्लिका की खूबसूरती में जरूर आ जाएगा और वो लोग उसे वश में करेंगे, उसके बारे में जानेंगे आखिर है कौन वो, यहाँ क्या करने आया है और तारा से इस तरह से बात करने का क्या मतलब हो सकता है। मल्लिका जानती थी कि उसकी खूबसूरती के सामने विक्रांत रंधावा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा और वो उसके वश में जरूर हो जाएगा। तो कुछ सोचकर मल्लिका ने अपने पहने हुए साड़ी का हल्का सा पल्लू साइड में कर लिया था ताकि उसका सामने वाला यानी के उसके चेस्ट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा दिखाई दे। वो विक्रांत रंधावा को अपनी खूबसूरती से रिझाना चाहती थी। वो चाहती थी विक्रांत रंधावा उसके खूबसूरत जिस्म को देखे और फिर उसके और आकर्षित हो जाए। जैसे ही विक्रांत रंधावा उसकी ओर आकर्षित होगा वो इस वक्त उसे अपने वश में कर लेगी, क्योंकि विक्रांत अब अपने केबिन में था। अमन ने उसे बिल्कुल अपने साइड वाला ही केबिन दिया था और वहां से वो तारा को आसानी से देख सकता था, तो इसीलिए वो खुशी खुशी वहां चला गया था। वो अच्छी तरह से जानता था अगर 24 घंटे वो अमन के साथ रहेगा तो वो तारा को खुलकर नहीं देख पाएगा। तो चूंकि उसे अमन ने अपने बराबर वाला केबिन दे दिया था तो वो आसानी से वहां से तारा को देख सकता था, तो इसीलिए वो वहां पर बैठकर उस वक्त तारा को ही देख रहा था। हालांकि तारा उसे नहीं देख पा रही थी, लेकिन विक्रांत की नजर सिर्फ और सिर्फ तारा पर थी। वो दूर से तारा को देख रहा था और मन मन सोच रहा था कि किस तरह से उसे हासिल किया जाए, क्योंकि जब तक वो थोड़ा सा जहर अमन के खिलाफ उसके मन में नहीं घोल देता वो उसे अपना नहीं बन सकता था। अभी विक्रांत कुछ सोच रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रांत ने जल्दी से तारा को देखना बंद कर दिया था और बोला था, आ जाओ। जैसे ही बाहर खड़ी हुई मल्लिका को विक्रांत की आवाज सुनाई दी कि अंदर आ जाओ, तो मल्लिका जल्दी से अपने साड़ी को पल्ला गिराते हुए अंदर चली गई थी और विक्रांत की सीधी नजर मल्लिका पर गई थी। जैसे ही उसने मल्लिका को देखा वो गुस्से से भर उठा था। मल्लिका ने तो सोचा था कि विक्रांत उसे बड़े ही प्यार से देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। विक्रांत की आंखों में अगर मल्लिका के लिए कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, क्योंकि जिस पल डांस पार्टी में डांस करते वक्त विक्रांत ने मल्लिका के हाथ को पकड़ा था वो इस वक्त जान गया था कि ये एक बूढ़ा शरीर है और उसके अंदर एक काली आत्मा है। उस वक्त उसे वक्त विक्रांत रंधावा अपने सामने उसे बुढ़िया यानी के मल्लिका को नहीं देखना चाहता था, क्योंकि वो अपनी सबसे खूबसूरत चीज यानी के तारा को देख रहा था। और इस बीच मल्लिका उसके कमरे में आ गई थी और जानबूझकर उसने विक्रांत के सामने अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया था, जिससे उसके शरीर का काफी ज्यादा हिस्सा दिखाई दे रहा था। इसकी हरकत से विक्रांत को उसे पर और भी गुस्सा आने लगा था और वो अंदर ही अंदर उसे एक खौफनाक मौत दे चुका था। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि वहां वो मल्लिका की जान नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो लोगों की नजरों में आ सकता था। लेकिन अभी वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, जब तक कि वो तारा को ना अपना बना ले। तारा को अपना बनाने के लिए ही उसने एक इंसानी शरीर को चुना था, और जब तक उसका इस इंसानी शरीर के साथ मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो अपने आप को किसी पर भी रिवील नहीं कर सकता था। मल्लिका बड़े ही स्टाइल से चलती हुई विक्रांत रंधावा के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। विक्रांत ने उसे एक पल के लिए भी नहीं देखा था, क्योंकि उसमें से उसे काला साया की स्मेल आ रही थी। तभी मल्लिका ने बड़े ही स्टाइल से उसके सामने झुकते हुए विक्रांत रंधावा से कहा था, वो एक्चुअली आप ऑफिस में नए हैं ना, तो मैं बस यहाँ आपको कंपनी देने के लिए आ गई हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मलिक ने बड़े ही स्टाइल से कहा था, क्योंकि मालिका सिर्फ और सिर्फ विक्रांत को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसके सामने उसे वक्त कोई मामूली इंसान नहीं था, उसके सामने उसे वक्त एक खतरनाक शक्तिशाली राक्षस बैठा हुआ था, जिसका उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था। उसकी शक्ति सभी काली शक्ति से और साथ ही साथ जिन्नों से भी कहीं ज्यादा थी। इतना ही नहीं, परियों से भी उसकी शक्ति सबसे ज्यादा थी। उसका अगर कोई राक्षस का मुकाबला कर सकता था तो वो था सिर्फ और सिर्फ तारा और अमन का बच्चा, जो उस वक्त तारा पारी के पेट में पल रहा था। केवल उसी के अंदर इतनी शक्तियाँ थीं कि वो उस राक्षस का मुकाबला कर पाए, वरना उसे राक्षस का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। तभी विक्रांत ने मल्लिका को जैसे ही अपने करीब देखा, उसे बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा था, प्लीज पहले तो आप सीधे तरीके से खड़ी हो जाइए, क्या आपको तमीज नहीं है कि औरतों को ढक कर रहना चाहिए? इस तरह से अपने आप को रिवील नहीं करना चाहिए। ये क्या तरीका हुआ आपका इस तरह से मेरे केबिन में आने का? और आप समझते क्या है अपने आप को? आपकी हिम्मत कैसे हुई है इस तरह से मेरे सामने आने की? विक्रांत ने एक ही झटके में मल्लिका को पूरी तरह से लताड़ दिया था। मलिक ने तो सोचा था कि विक्रांत उसके लटके झटकों में ऐसा खो जाएगा कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देगा, और वो वहाँ उस केबिन में ही उसके साथ किसिंग स्टार्ट कर देगा। लेकिन विक्रांत ने तो उसे इतनी बुरी तरह से लताड़ दिया था, मल्लिका को ऐसा लग रहा था कि कोई गड्ढा खोदे और वो उसमें कूद जाए। मल्लिका को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, उसे आज से पहले इतनी इंसल्ट कभी फील नहीं हुई थी। हालांकि उसे कितनी ही बार काली शक्तियों के मालिक अमित ने भी बेइज्जत किया था,
लेकिन इतनी बेइज्जती वो भी एक मामूली इंसान के सामने, मामूली इंसान के हाथों, उसे बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही थी। तब मल्लिका ने जल्दी से अपनी गिरी हुई साड़ी को अपने आप को कवर कर लिया था और बोली थी, I'm sorry sir, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो सिर्फ आपके लिए यहाँ आई थी कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। तब विक्रांत हंसने लगा था और बोला था, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें कहूँ, एक बुढ़िया को? अचानक से विक्रांत ने ये कह दिया था। जैसे ही मलिक ने ये सुना, उसके होश उड़ गए थे और वो अपने आप को देखना चाहती थी कि कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील तो नहीं हो गई है। और वही विक्रांत को भी इस बात का एहसास हो गया था कि गुस्से में उसने उसे बुढ़िया कह दिया था, जो कि कहीं न कहीं उसे पर शक पैदा कर सकता था। इसीलिए अपनी बात को सही साबित कर आपकी बात को करेक्ट करते हुए वो बोला था, मेरा मतलब है कि गुड़िया को, गुड़िया जैसी है ना आप, एक छोटी डॉल के जैसी लड़की है, तो इसीलिए मुझे आपकी किसी मदद की कोई जरूरत नहीं है और आप जा सकती हैं। विक्रांत ने जल्दी ही मल्लिका से पीछा छुड़ाने के लिए कहा था। मल्लिका भी खुद वहाँ नहीं रुकना चाहती थी और वो जल्दी ही उसके केबिन से बाहर निकल गई थी। और जैसे ही वो बाहर आई, उसके दिमाग कानों में सिर्फ और सिर्फ विक्रांत के कहे हुए शब्द ही गूंज रहे थे, बुढ़िया बुढ़िया। बुढ़िया। मल्लिका को रह रहकर यही लग रहा था कि कहीं उसकी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं हो गई है, कहीं उसका चेहरा तो बुढ़िया जैसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मल्लिका अगर यंग और गौरी और जवान दिखती थी तो सिर्फ और सिर्फ उस काले साये की वजह से जो उसके अंदर था, और अगर वो काला साया जो उसके जिस्म से निकाल दिया जाए तो वो एक बुढ़िया के अलावा कुछ नहीं थी। उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा सिकुड़ी हुई सी थी। अपना असली चेहरा मल्लिका देख चुकी थी और वो कभी भी अपने असली चेहरे में नहीं आना चाहती थी। मल्लिका विक्रांत रंधावा की केबिन से निकलकर सीधा वॉशरूम में घुस गई थी और जाकर अपने चेहरे को कितनी बार उसने पानी से धोया था। उसे खुद को लगने लगा था कि हाँ, वो बुढ़िया है, ये बात सच है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि विक्रांत को ये बात कैसे पता चली। लेकिन फिर वो सोचने लगी थी कि हो सकता है उसने गुस्से से ऐसा कह दिया हो, उसने बाद में गुड़िया भी तो बोला था। हो सकता है वो ये कहना चाहता है कि मैं गुड़िया हूँ, एक छोटी लड़की जैसी हूँ, तो मुझे इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए, लाइक लेट। तथा मल्लिका खुद से ही सवाल जवाब किए जा रही थी।